जय कुंज बिहारी जय राधा माँ, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीरवन चारे, जय कुंज बिहारी यमुना तीर, यमुना तीर वन चारे, जय कुंज बिहारी यमुना तीर, ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी, ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारे, जय कुंज बिहारी यमुना, ओ यमुना तीर वन चारे, जय कुंज बिहारी यमुना तीर, ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओ हरे कृष्णा 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 hare 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 rama hare rama 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 hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada Shila Prabhupada Prabhupada Shila Prabhupada Haribol 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 Nitagor Haribol
Nitai Gaur Premanande Jayam Vishnupad Paramhans Prabhujakacharya Stotra Shat His Divine Grace Abhay Chananarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnavind Ki Namacharya Shriharidas Thakur Ki Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivind Ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Vrindavan Dham ki jai, Mathura Puri Dham ki jai, Dwarka Puri Dham ki jai, Navadip Mayapur Dham ki jai, Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham ki jai, Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Upasthita Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Bhimanandi. All glories to the symbol devotees, Hare Krishna. Glories to Guru and Gurang. Glories to Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. श्रीमद् भागवतम कक्षा में आए सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। तो हमारे पीछे पहले शब्दों को धरे भवन्ति तो हम पहले श्लोक को बोल लेते हैं पूरा उसके बाद करेंगे। भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तस्त्वामनुव्रता भवान में खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूप धृक् भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्ता त्वामनुव्रता भवान में खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूप धृक् भवन्ते पुरुषालोके मद्भक्तास्त्वामनुव्रता भावान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपद्रेक् भवन्ते पुरुषालोके पुरुषालोके भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां हन्तां भवन्ति पुरुषालोके माताएं शब्दार्थ हमारे पीछे धराई भवन्ति हो जाते हैं पुरुषा मनुष्य लोके इस संसार में मत भक्ता मेरे शुद्ध भक्त त्वाम तुमको अनुव्रता अनुसरण करते हुए भवान तुम मैं मेरा खलु निसंदेह भक्तानां समस्त भक्तों का सर्वेषां विभिन्न रसों में प्रतिरूपद्रेक यथार्थ आदर्श। अनुवाद हमारे पीछे धराइए जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे वे संभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। तुम मेरे भक्त का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हो और अन्य लोगों को तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य स्कंद पुराण से एक उदाहरण देते हैं। ऋते तु तत्विकान देवान नारदोत्तस्तथे वचा प्रहलादादूतम को नु विष्णु भक्तो जगतपते जगते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेकानेक भक्त हैं जिनकी गणना श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में हुई है। स्वयंभु नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलि व्यवसायिको वयम। 12 अधिकारी भक्तों में जिनमें ब्रह्मा नारद शिव कपिल मनु इत्यादि सम्मिलित हैं, प्रहलाद महाराज सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तात्पर्य में केवल ये 2 श्लोक ही हैं जिसमें कि रूपा जी बता रहे हैं कि इस अनुवाद में यहाँ पर भगवान नरसिंह, इस अध्याय का नाम है भक्त शिरोमणि प्रहलाद, जो कि अब भगवान के सामने, भगवान ने उनसे पूछा कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें, और वो बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और इतनी शुद्ध अवस्था में है, क्योंकि जिसके सामने भगवान आ जाएं, भगवान जिसको छू लें, वो तो पवित्र हो ही जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज तो पहले से ही पवित्र थे, लेकिन फिर भी आउट ऑफ ह्यूमिलिटी वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे हृदय से कलमश खत्म हो जाए, भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं, इस प्रकार की इच्छाएं कर रहे हैं। तो एक भक्त को किस प्रकार की प्रार्थनाएं करनी चाहिए, और विपरीत परिस्थितियों में जब, जैसे कि प्रहलाद महाराज थे, किस किस प्रकार के दंड ना दिए उनको उनके पिता ने, क्या क्या परिस्थितियां उनके सामने आई, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वो बेचैन नहीं हुए, डिस्टर्ब नहीं दिखे, या यूं कहें कि किसी और देवी देवता की शरण में जाते नहीं दिखे, वो हमेशा से फिक्स थे। क्यों? क्योंकि जब माता के गर्भ में थे तो नारद मुनि जी के द्वारा जो कथा सुनाई गई, जो तत्व सीखा, उससे पूरी तरह से वो कन्विंस थे। और इस प्रकार जब वो बाहर आए तो भक्तों से लक्षण प्रकट किए, पिता असुर कुल के हैं, है ना, और बहुत शक्तिशाली भी हैं। क्या किया था उन्होंने? बहुत ही भीषण तपस्या की थी। किस लिए की थी? क्योंकि उनके जो भाई थे हिरणाक्ष, उनको मारा था भगवान विष्णु, उनको मार चुके थे। किस रूप में? वराह के अवतार में। तो उनसे बदला लेना था, और उस बदले को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? भीषण तपस्या की 36,000 वर्षों तक हमारे, और ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हुए उनसे, और प्रसन्न होकर उन्होंने जब कहा कि मुझे तो अमर होने का वरदान दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया ब्रह्मा जी ने, लेकिन फिर उसको इनडायरेक्ट वे में मांग लिया कि ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं, मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, और तथास्तु कहा। इतनी शक्ति आ गई, तपस्या से शक्ति आ जाती है लोगों में, है ना, इतनी तपस्या कर इतनी शक्ति प्राप्त हुई, और जब देखा कि कोई मुझे मार नहीं सकता अब, तो उस अहंकार में, उस घमंड में उन्होंने विष्णु को मानने से भी इनकार कर दिया, और लोगों को बोला कि तुम भी इसकी भक्ति छोड़ दो, है ना, अब मैं ही हूं जो हूं। और देवता, बड़े बड़े वरिष्ठ देवता भी सब कांपने लगे। देखिए, भगवान किसी भी समय अवतरित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी समय दिया। कितने सारे देवताओं, कई बताते हैं कि वर्णन मिलता है शास्त्रों में कि इंद्र जैसे देवता संसार में कुछ भी हो, किसी भी के शौर्य की तुलना की जाए तो इंद्र से भी की जाती है, ऐश्वर्य की तुलना की जाए तो इंद्र से की जाती है। ऐसे इंद्र जो सारे के सारे स्वर्ग के राजा हैं, और ऐसे भी लोग उनके यहां पर कांपते थे, झाड़ू पोंछा करते थे इनके यहां पर, अगर अपनी भ्रिकुटी ऊपर कर लें तो ऊपर के लोग कांपने लगते थे, इनको लगता था अब कुछ होने वाला है, हमारी तरफ ना देख लेते हैं, इस प्रकार कांपा व्यक्ति कांपता था। जैसे कल कोई कथा सुना रहा था कि एक बार यमराज ने किसी चिड़िया को देख लिया, अब यमराज है ना, सबको पनिशमेंट देते हैं, उन्होंने बस एक बार देख लिया चिड़िया को, और चिड़िया काम ने मुझे क्यों देख लिया, मेरा नंबर है क्या? तो वो शरण में गई भक्त के, भाई मैं क्या करूं, मेरे को देख लिया ऐसे, मेरे को तो कांपना हो रहा है। गरुड़ जी की शरण, उन्होंने कहा मैं तुम्हें कहीं ऐसी दूर जगह ले जाता हूं जहां पर यमराज जी देख ही ना पाए, ऐसी जगह छुपा के कहीं ऐसी दूर जगह पहुंचा दिया। तो जब यमराज जी वहां से बाहर निकले, देखे तो कहां गई चिड़िया हो? तो कहते क्या हुआ, क्यों देख रहे हो? कहते मैं चिड़िया को देख रहा था। कहते क्यों? कहते मैंने उसको देखा, वो यहां पर है और इसकी तो मृत्यु लिखी हुई थी, ये यहां पर क्या कर रही थी? और जहां पर इसकी मृत्यु लिखी थी इतनी दूर जगह है, इतनी दूर है कि मतलब वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता है, मतलब इतनी दूर है। कहते कहां लिखी थी? कहते वो जगह है, उस जगह पेड़ है, वहां पे मरना था उसको। कहते वहीं तो छोड़ के आया उसको। है ना, तो जिसकी मृत्यु लिखी वो वहां पहुंच ही जाता है ना। तो जब यमराज जी जैसे व्यक्ति किसी को देख ले, है ना, तो संकट आ जाता है। तो ये जो हमारे हिरण्यकश्यपु जी थे, ये इस प्रकार के खतरनाक असुर थे कि इनको देखकर सब लोग थर्राते थे, कांपते थे, जैसे आप ठंड में कांपते हो। और इतनी शक्ति होने के बाद इनके घर में ही एक संतान ऐसी हो गई जो कि भक्त निकले। पिताजी का डर ही नहीं है उनको, उनके टीचर, उनके प्रिंसिपल सब डरते हैं, सब जो है आसुरी विद्या सीख रहे हैं, लेकिन एक प्रहलाद महाराज हैं जो प्रचार कर रहे हैं, क्या श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो उन पे फिर विपदा आई। पिताजी ने समर वेकेशन में जब घर बुलाया, बिठाया गोदी में और पूछा क्या सीखा, तो विष्णु की बातें कर रहा है। पिताजी को कह रहा वन जाओ, ये क्या जीवन यहां खराब कर रहे तुम, उस भगवान की शरण ग्रहण करो। प्रभुपाद जी ने भी बोला था महात्मा गांधी जी को कि भाई तुम इस देश के लिए इतना लड़ रहे हो, इतना मर रहे हो, पूरा संसार में चक्कर लगा रहे हो, आज भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी पोस्ट पर बिठा दिया, एकदम छोड़ो इसको, ये पॉलिटिक्स छोड़ो और गीता का प्रचार में आ जाओ। तुम कहते हो मैं 125 साल जीऊंगा, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, मृत्यु सबकी आती है। मैंने तुम्हें कई पत्र लिख लिए और तुम्हारे सेक्रेटरी हमेशा तुम्हें बिजी बताते रहते हैं, एक भी गनीमत नहीं हुई कि मेरा एक लेटर देख लो तुम। जो मुझे मीटिंग के लिए, मैं बताना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं तुम्हारा पुराना एक शुभचिंतक हूं, नाम नहीं बताया, मतलब नाम नीचे लिखा है, बट मैं तुम्हारा पुराना शुभचिंतक हूं, आशा करता हूं कि तुम इसको पढ़ोगे, और सब बड़ा कुछ लिखा। प्रभुपाद जी ने कहते हैं अपना जो महात्मा नाम है उसको सिद्ध करो और भगवद गीता के प्रचार में आ जाओ, ये पॉलिटिक्स ये सारा इल्यूजन है जो तुम्हें इतना ऊंचा ले गया है, यही नीचे ले जाएगा, ये देश के लोग तुम्हें जो है मार देंगे। और हुआ क्या, एक महीने बाद ही हरि बोल। तो इस प्रकार जो है हिरण्यकश्यपु अब इतनी ऐसी स्थिति में है, और बच्चे को पूरी तरह से उन्होंने वो किया, लेकिन प्रहलाद महाराज जो परिवार में आ गए इस प्रकार के भक्त, और जिन उनको सहन नहीं हुआ उनका प्रचार, बेटा ही प्रचार कर रहा है बताओ, तो उन्होंने, राजा है ना, तो राजा जब कोई नाम लेता था विष्णु का तो उसको मरवाते थे, सब डांटते थे, घर का ही बेटा शुरू कर दे अगर चैंटिंग, है ना, तो उसने कहा ठीक है मैं भी लगाव नहीं रखूंगा, है ना, जो मैं दंड दूसरों को देता हूं वही दंड मैं अपने बेटे को भी दूंगा, मृत्यु दंड, जाओ डिटैच पूरी तरह से अनासक्त बेटे से, पुत्र 5 साल का, कोई मोह नहीं, भगवत गीता के ज्ञान है, गलत जगह पे इस्तेमाल हो रहे लेकिन। और यही हिरण्यकश्यपु भाई के मरने पर भी प्रवचन देकर गए थे, तब गए थे वहां पर जंगल में पहाड़ों में, आत्मा के बारे में बता रहे थे, भाई कोई ये सब लिखा है, मृत्यु आती है, सब कुछ जानते हैं, भगवत पूरा जानते हैं, और बेटे के सामने भी पूरी तरह सबके सामने एकदम न्याय कर दिखा रहे कि देखो मैं जिसको बोलता हूं, अगर कोई मेरे सामने विष्णु का नाम लेता सबको मारता हूं, तो ये मेरा बेटा आ गया, तो कोई लगाव नहीं है ऐसा कुछ, एक ऑप्शन दिया कि ठीक है एक बार ठीक करके ले आओ, बच्चा है छोटा, अगली बार फिर आए तो फिर वो श्रवणम विष्णु श्रवणम सब परेशान. अब उनके ऊपर आपदाएं शुरू हुई. लेकिन प्रहलाद महाराज जी का डिटर्मिनेशन देखिए, उनकी भक्ति की पराकाष्ठा देखें. विपदाएं आने के बाद भी, समस्याएं आने के बाद भी, कभी हाथी के पैर के नीचे डाल रहे हैं, है ना, कभी खोलते हुए गरम गरम कढ़ाई में डाल रहे हैं, अग्नि में डाल रहे हैं. उनकी बहन होलिका है ना, उनको तो वरदान भी प्राप्त था, ये जलेंगी नहीं, ये और गोदी में लेकर बैठी और सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन प्रहलाद महाराज बच गए, होलिका भी जल गई. तो भगवान के भक्त पर सारी विपदाएं भी आई और उन विपदाओं में उन्होंने कभी भी अपना जीवन का लक्ष्य भूले नहीं, अपने इष्ट को भूले नहीं, सदैव उनका स्मरण करते रहे, उनके नामों का जप करते रहे. आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे. क्या आदर्श पेश किया प्रहलाद महाराज ने? भक्ति की जो दृढ़ता दिखाई, विपरीत परिस्थितियों में जो भक्ति कर दिखाई, नाना प्रकार के आपदाएं और कष्ट मिलने पर भी जो डिटर्मिनेशन अपने इष्ट के प्रति था उनका, जो प्रेम था, जो भक्ति के अंगों का जो पालन करना था, उन्होंने कभी उसके अंदर कंजूसी नहीं करी या उसको डेविएट नहीं हुए कभी. ये दृढ़ता सिखाई उन्होंने. हम जैसे न्योफाइट डिवोटिस के ऊपर जब कोई कष्ट आते हैं तो हम भी अपने हृदय की स्थिति देख सकते हैं. हमारे तो ईष्ट, कईयों के तो ईष्ट भी बदल जाते हैं कि इधर इच्छा पूरी नहीं हो रही या ये मेरी रक्षा नहीं कर रहे. और हम लोग किसी न किसी की शरण की ग्रहण कर लेते हैं और किसी की भी शरण में चले जाते हैं. लेकिन भगवान जो हैं वो चाहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भुक्ता नाम योग क्षेम व्याह में हूं. मैं वहन करता हूं, मैं, कृष्ण कहते हैं, अपने भक्तों के सारे कष्टों को मैं वहन करता हूं पर्सनली. जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं और जो नहीं है मैं प्रदान करता हूं. लेकिन कैसे भक्तों का? अनन्य चिंतयन्तो माम, जो सदैव अनन्य भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण के अलावा, भगवान के अलावा और किसी का, किसी की शरण में नहीं जाते, ऐसे भक्तों का, है ना. जैसे एक बार जब द्रौपदी को सभा में खींचा गया तो सारे के सारे योद्धा वहीं पर थे लेकिन बंधे हुए थे, कोई धर्म से बंधा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं आगे आया द्रौपदी की रक्षा के लिए. और द्रौपदी ने भी जो है पूरा प्रयास किया, सबके पास गई रक्षा हेतु. फिर जब लगा कि नहीं अब कोई नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रही है वो कि यहां जाने से कुछ नहीं हुआ, इधर जाने से कुछ नहीं हुआ, इनके पास जाने से भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर अल्टीमेटली उसने अपने बाल शक्ति पर भी जो है प्रयास किया. और फिर जब लगा कि दुशासन के आगे वो नहीं जीत सकती तो उन्होंने फिर बताते एक हाथ भी ऊपर किया, फिर भगवान को पुकारा. और भगवान जो है द्वारका में भोजन कर रहे हैं और परेशान घूम रहे, वो भी त्याग दिया, उठ के चलने लगे. कि रुक्मणी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों इतने चिंतित दिखते हो? उन्होंने कहा मेरे भक्त परेशानी में है, मुझे उसकी मदद करनी है. तो जाते क्यों नहीं? वो पूर्ण समर्पण नहीं हो रहा है, कभी इनके पास, कभी इनके पास, कभी अपना बल, कभी एक हाथ, यह हाथ थक गया तो फिर यह हाथ, यह हाथ. और जब फिर उनको लगा कि देयर इज नो होप, देयर इज नो वन हु कैन रेस्क्यू, जो कोई बचा सके, तो शी सरेंडर्ड 100% ना, बोथ हैंड्स. तो भगवान ने फिर तुरंत रक्षा पहुंचाई पूरा. ऐसा नहीं कि 100 नंबर पर फोन मिलाया है, पुलिस अभी घूम रही है, एड्रेस ही पूछ रही है ना. तुरंत भगवान ने जो है अनलिमिटेड साड़ी पहुंचाई और रक्षा करी भक्त की. तो उस प्रकार का फेथ चाहिए, उस प्रकार का शरणागति चाहिए. और इस प्रकार की शरणागति के लिए बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी जरूरत पड़ती है सरेंडरनेस की. बाहरी रूप से मतलब कि एक्टिविटीज में दिखना चाहिए. मोर इंपॉर्टेंट इज हृदय भी, हृदय से भी समर्पित होना चाहिए. नहीं तो स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ये छोटा सा बच्चा प्रहलाद, इनका आचरण फॉलो करो कह रहे हैं. 5 साल के बच्चे को फॉलो करो. क्यों, क्या कह रहे हैं जी? क्योंकि तुम्हारे जैसा आदर्श अनुसरण करेंगे स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे, जो प्रहलाद जैसे 5 साल के बच्चे को फॉलो करेगा. वो मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे जो केवल प्रहलाद महाराज के इस प्रकार के चीजों का अनुसरण करेगा, उनकी टीचिंग्स का अनुसरण करेगा. और कह रहे हैं तुम मेरे भक्त का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हो. भक्त तो बहुत है भगवान के, लेकिन ये सबसे ऊंचा उदाहरण है. और फिर और अन्य लोगों को तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए. भगवान ने बोल दिया महाजनो योग गता सुपंथ. जो महाजन है, ये 12 महाजनों में एक है जो नीचे श्लोक दिया. और महाजन वो लोग हैं जो आम जन नहीं है, वो है ना, हम तो आम जन है ना, आम आदमी, लेकिन ये महाजन है. अर्थात इनको शास्त्रों के सारे मंत्र मर्म और तत्व मालूम है. ये भगवान को तत्व से जानते हैं और इस प्रकार का आचरण और आदर्श पेश करते हैं जो शास्त्र सम्मत होता है. और इनके आचरण से लोग जो है अपने जीवन को चला सकते हैं इनको देखकर. और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार वरिष्ठ लोगों का, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भगवत गीता में भगवान 3 अध्याय के 21 श्लोक में कहते हैं यद यद अचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतुर जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका क्या करता है, अनुसरण करता है. श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका जैसे देश में जाकर प्रचार शुरू किया, फिर ब्रिटेन. क्यों? क्योंकि इन देशों की चीजें सबको पसंद आती हैं, भारतीयों को खासकर. बस लेबल लगाना चाहिए मेड इन अमेरिका और मेड इन लंदन. तो जब उन लोगों को भक्त बनाया तो फिर सारे देशों में उन अमरीकी लोगों को देखकर, युवाओं को देखकर, उन ब्रिटेन वासियों को देखकर, जॉर्ज हैरिसन, प्रभुपाद जी कहते थे जॉर्ज हैरिसन भी चाहते थे सबका मैं भला करूं. प्रभुपाद ने कहा फिर तुम्हें तो जल्दी से कृष्ण कॉन्शियसनेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा तो भला हो ही नहीं सकता इसको ज्वाइन करके. उन्होंने अपने 5 लोग का एक बिल्डिंग भी उनको इस्तेमाल करने के लिए दिया. प्रभुपाद का धन्यवाद और आगे बढ़ो. जब तुम जैसे लोग समाज के इस तरह के कार्यों से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक कार्यों से, तो समाज इसको फॉलो करेगा. तो प्रभुपाद जी ने भी दिखाया कर कि किस प्रकार वरिष्ठ लोगों को, जो समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, और सोसाइटीज में भी देखें, देशों में भी देखें, जो महान देश थे उस समय के जिनको लोग फॉलो करते थे, प्रभुपाद ने पहले उनको प्रचार किया. और फिर भारत देश में करने की आवश्यकता नहीं पड़ी. भारत में तो जब उनको लाए व्हाइट एलिफेंट्स कहकर, उनके जो दिव्य डिसाइपल्स थे वो इतने लंबे चौड़े और गोरे गोरे थे, वो जब आते थे यहां पर कीर्तन करते थे और नृत्य करते थे तो प्रभुपाद जी उनको संज्ञा देते थे डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स. नृत्य करते हुए सफेद हाथी, और बड़े खुश होते थे। उनको देखने के लिए 10-15 हजार लोग इकट्ठे हो जाते थे। बताइए, यहाँ एक कार्यक्रम करो तो 500 हजार में हालत खराब हो जाती है, रोड जाम और ये पता नहीं क्या क्या अरेंजमेंट करने के लिए कितनी मीटिंग, कितनी प्लानिंग। प्रभुपाद जी जब उन डिसाइपल्स को लेकर आए तो 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग पंडाल में ऐसे इकट्ठे हो जाते थे उनको डांस करता देखने के लिए। लेकिन दिमाग फिर भी वैसे ही था, हमें तो गीता पता है, हमें तो आती है, हमें कृष्ण राम मालूम है, हमें क्या पढ़ना है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। और ये समस्या, ये कीड़ा पूरे देश में है, सबके साथ है, हमें तो पता है, हमारी तो है ही रामकृष्ण, इनके इनके घर परिवार से ही है सब, है ना, जैसे अपने चाचा भतीजा कोई लगते थे, हमारे ही तो है जी। कुछ नहीं पता फिलॉसफी का, ABC नहीं पता। और वो जो 50 पैसे का स्टिकर आया था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, कर्म ही पूजा है ना, इसने तो लोगों को गीता पढ़ने से मना कर दिया, लोगों ने अपनी दुकान पे चिपका लिया उसको, यहाँ इधर भी लगा लिया, ग्राहक मेरा भगवान उसी को लूटता हूं मैं, है ना। मतलब अब व्यक्ति पहले गीता, फिर भी होता था कि चलो गीता इतनी महान है तो पढ़ लें, अब जब से ये स्टिकर आया या ये लगाया लोगों ने तो पढ़ना भी छोड़ दिया गीता, कि जी यही हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मतलब जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, सुबह 9 बजे दुकान खोलता हूँ ना, 9 बजे बंद करता हूँ, है ना, कर्म ही पूजा है, उन कर्मों के फलों को मैं अपने लिए भोग रहा हूँ, सकाम कर्म कर रहा हूँ, बस ठीक है, उल्टे सीधे कर्म हो रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है इससे, मैं कहीं जाऊँ नरक जाऊँ कहीं जाऊँ, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। जरूरत नहीं समझी। आज देश में अब सोच कर देखिए, बिना ज्ञान के किसी के पास अगर ज्ञान नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनपढ़ बोलते हैं, लिटरेट बोलते हैं ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं, भौतिक ज्ञान क्या है? इसके साथ तो अज्ञान बोलते हुए भी ज्ञान लगाओ ना, कंफ्यूजन होती है। कहने का मतलब है ये तो बिल्कुल अंधकार है। आपको इस कुर्सी के बारे में पूरी नॉलेज है, क्या यूज है हम, एक मैटर के बारे में पूरी ज्ञान है आपको, इससे आपका कोई उद्धार होने वाला है क्या? कोई फायदा होने वाला? आपकी चेतना में कोई अपलिफ्टमेंट नहीं, आपका विकास नहीं, मानसिक विकास नहीं। तो इस तरह से इस भौतिक संसार में 5 तत्वों से संबंधित ज्ञान को दुनिया ज्ञान बोलती है, स्कॉलर बोलती है, जो इसमें स्कॉलरशिप ले ले या बहुत आगे बढ़ जाए। 3 साल, 5 साल, 18 साल, 20 साल बर्बाद करते हैं लोग, और उसमें से 10% भी काम नहीं आता है। आप इंजीनियरिंग करके आइए, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके आइए, या आप MBA करके आइए, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके आइए, आपको बड़ा लिमिटेड काम करना होता है, जो रोज यूज होने वाला है, एक आधी चीज कभी, अच्छा जो चीज नई भी आएगी वो भी आपको फिर पढ़नी पड़ती है कि देखो इसमें क्या हुआ, देख ले एक बार जरा, बहुत कम इस्तेमाल होती चीज। लेकिन यही ज्ञान जिसे हम लोग लेते हैं, या इसी ज्ञान से बने हुए नेता लोग इत्यादि पूरे समाज में, यही लोग तो हमें लीड कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि इस प्रकार भौतिक ज्ञान के आधार पर, भौतिक युक्तियों से हम लोग परमानेंटली सुखी हो जाएंगे, ये संसार में पूरे विश्व को सुखी कर देंगे। कैसे हो सकता है? तो जब लीडर्स, हमारे देश के लीडर ले लेते हैं, हमारे देश के जो लीडर्स हैं, इनको बहुत जरूरत है इस ज्ञान की, क्योंकि आज पूरा समाज इनको फॉलो करना चाहता है, चाहे वो किसी भी स्तर के हों। हम बच्चों को देखते हैं कि इसने गलत कर दिया, लेकिन बच्चा घर में पेरेंट्स को देखता है। हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि ये स्टूडेंट ठीक नहीं है, स्टूडेंट टीचर्स को देखता है। हम सोसाइटी को देखते हैं, सोसाइटी लीडर्स को देखता है। बट नो वन इज ट्रेंड, किसी को भी ज्ञान नहीं है, किसी को पता नहीं शरीर और आत्मा का भेद, किसी को पता नहीं कि ये संसार में भगवद गीता का क्या उपयोग है। इतने इतने बड़े आचार्य हुए, जो राजऋषि हुए, जिन्हें कहते हैं अम्बरीश महाराज, जनक महाराज, इन लोगों ने भगवत गीता जैसे ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और पूरे के पूरे राज्य चलाए। लेकिन सोच कर देखिए हमें किस तरह के, आप ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिस गाड़ी का ड्राइवर कुछ नहीं जानता, लाइसेंस भी नहीं है उसके पास, नहीं लाइसेंस तो फिर भी बनवा लिया दो नंबर में, लेकिन ड्राइविंग नहीं आती उसको, और आप कुछ भी बोलते हो कहते चुप, कोई पूछे तो बोलना मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूं, है ना। और इस प्रकार हम उस गाड़ी में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हम संतुष्ट रह पाएंगे, नहीं रह सकते। उसी तरह हमारे देश या हमारे नेता लोग या हमारे जो सो कॉल्ड और वरिष्ठ लोग हैं समाज के, हो सकता है उनके पास भौतिक पढ़ाई की काफी डिग्रीज हों, कई प्रकार की एक्सपर्टीज हों, कुछ ना कुछ कार्य करने की, किसी एक पर्टिकुलर मटीरियल फील्ड में वो एक्सपर्ट हो, बट नो यूज। क्यों? क्योंकि वो खुद तो जाएगा जाएगा नरक में, या अज्ञानता की वश दूसरों को भी लेकर जाएगा। ऐसे नेताओं से घिरे हुए, ऐसे सुपीरियर लीडर से हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं किसको फॉलो करो? प्रहलाद महाराज को फॉलो करो, इन महाजनों को फॉलो करना है, इनका अनुसरण करना है। जो उन्होंने शिक्षाएं दी और जो उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार जी कर दिखाया, तो लीडर का काम है इस प्रकार अपने आचरण से इन सब चीजों को कर दिखाना। एक बार बताया था, जैसे एक गुरुकुल में दो शिष्य थे और दोनों शिष्य बहुत अच्छा पढ़ लिख कर एक एक अलग अलग फील्ड में बहुत माहिर हो गए, और माहिर होने के बाद जैसे थोड़ा हो ही जाता है अहंकार तो आ ही जाता है कि अपने अपने फील्ड में माहिर थे। तो एक बार गुरु जी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ जरा, और कमरे की हालत बहुत ठीक नहीं है, बट आप लोग थोड़ा उसका सफाई कर देना झाड़ू वाड़ू लगा के। गुरु जी चले गए, शाम हो गई, शाम तक झाड़ू नहीं लगा था। कारण क्या था कि एक दूसरे को बोलता था कि भाई तुम करो, कहता सीनियर तो मैं हूं, मैं बोल रहा हूं तुम करो, वो कहता ठीक है सीनियर तुम हो बट पोस्ट तो मेरे पास बड़ी है, आपसे ज्यादा नाम तो मेरा है। तो इस प्रकार पूरा दिन वो झाड़ू पड़ा रहा, मिट्टी वहीं पड़ी रही। तो गुरु जी ने देखा भाई ये समस्या है, ये तो दोनों अपने को महान बता रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा ठीक है मैं ही लगा लेता हूँ झाड़ू, है ना। तो गुरु जी ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। ये देखकर उनका जो है दिमाग ठीक हो गया, उन्होंने कहा भाई ले ये क्या हो गया, मुसीबत हो गई। फिर दोनों ने झाड़ू उठा लिया और दोनों सफाई करने लगे। तो समाज में क्या होता है, जैसे ही कुछ प्राप्त होता है, जैसे ही रिकॉग्निशन मिलता है, तो तुरंत जो है अहंकार और घमंड हमें घेर लेता है। लेकिन गुरु का, लीडर्स का काम है कि वो अपने आचरण से पेश करें लोगों को, ये दिखाकर कि किस प्रकार कैसी सेवा की जाती है। क्योंकि फॉलोवर्स जो हैं, जो फॉलो करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो देखते हैं लीडर्स को कि इनके अंदर क्या गुण है और क्या कमियां हैं। वो देखते हैं कि अच्छा इन्होंने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा जवाब दिया, इन्होंने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा काम किया, इन्होंने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये नियम तोड़ा, तो दिखता है। और आदर्श का मतलब यह नहीं है कि हम लोग, हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए आदर्श है, हर व्यक्ति कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को से श्रेष्ठ है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो अभी बिल्कुल कल ही तो आया हूं, मैंने अभी तो अभी भी ज्वाइन किया मैंने ये, मैं तो, हर व्यक्ति किसी न किसी से श्रेष्ठ है जो कि किसी न किसी को गाइड कर सकता है। जैसे कल महाराज बता रहे थे कि प्रचार करना है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रचार कर सकता है, तो हर व्यक्ति कर रहा है। तो इन टीचिंग्स को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे, भगवान अगले गीत श्लोक इसी गीत में कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। और फिर क्या कह रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। अगर भगवान कह रहे हैं मैं ही कुछ गड़बड़ कर दूं तो सारे लोग वही करेंगे फिर। तो हर व्यक्ति को अपने नियत कर्म ठीक प्रकार से करने चाहिए, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जिस वर्ण आश्रम में है उसके सभी नियमों का पालन करते हुए। क्योंकि प्रभु भगवान इससे पहले ना, इससे पहले के पहले श्लोक में 19वें श्लोक में बहुत सुंदर गुण बता रहे हैं प्रहलाद महाराज के। कह रहे हैं जब कभी और जहां कभी भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं, वह देश तथा परिवार भले ही गर्वित ही क्यों ना हो पवित्र हो जाते हैं, जो इस प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं। तो प्रहलाद महाराज के अंदर इस प्रकार की क्वालिटीज थी, सुंदर गुणों से भरपूर थे, तो वो गुण आकर्षित करते हैं लोगों को। भगवान कह रहे हैं मेरे को भी अपने कर्म करने पड़ते हैं, बट इक्विपोइज, मैं सबके प्रति संभाव हूं, प्रहलाद महाराज भी संभाव हैं। तो इन सब गुणों को हमें इन आचार्यों से सीखना चाहिए, और जब हम लोग इनके आचरण का, इनके द्वारा दिए गए संदेशों का पालन करते हैं, तो हम लोगों को, हम लोग बहुत सिक्योर हैंड्स में होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, सुरक्षित होते हैं। शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग वो सब, हम लोगों को वो सब दिया गया है जो कि प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज या अन्य भक्तों की टीचिंग्स थी, नारद महाराज की जो टीचिंग्स थी। और बहुत आसानी से अगर हम लोग इन कार्य, इन सब शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो बहुत आसानी से अपनी सुरक्षा रक्षा कर सकते हैं। और इस प्रकार के आचरण का, जैसे शास्त्र में बताया गया, इसका फायदा है कि भगवान बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। नारद मुनि जी बोलते हैं कि मैं भी, क्योंकि बहुत संभाव था, मेरा खेलने में बहुत रुचि नहीं थी, मैं हमेशा जो है मौनी था, व्यर्थ की बात नहीं करता था, तो ये सब गुण थे मेरे अंदर, तो जाके मुझ पे भक्ति वेदान जो डिवोटीज थे, जो आए थे हमारे यहाँ, उनकी कृपा हुई। भगवान स्वयं बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज को कि इनके अंदर इस प्रकार की समदर्शिता थी, ये छोटा बड़ा किसी को नहीं मानते थे और हर एक व्यक्ति की मदद करते थे, हर एक को प्रचार करते थे, तो इस प्रकार का गुण था इनके अंदर। इसलिए सबको चाहिए कि वो हर व्यक्ति का, क्योंकि हम लोग शारीरिक दृष्टि से या किसी के बाहरी रूप से या उसके लेवल को देखकर प्रचार नहीं करते। प्रचार का मतलब है कि हर व्यक्ति तक पहुंचना और हर व्यक्ति को समय काल परिस्थिति के अनुसार ज्ञान देना भगवान के विषय में। आज संसार में बोल रहे हैं कि जो ये भगवद गीता है, इसे स्कूल्स में लगानी चाहिए, लीडर्स लोग बोल रहे हैं, और बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन समस्या क्या है कि अगर टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो बच्चे वो सारी गुणों को किसके अंदर देखें? टीचर तो करते नहीं फॉलो। फिर देश के जो लीडर्स हैं, जो बोल रहे हैं कि इनको करो, ज्यादातर आप देख लीजिए किस प्रकार का आचरण होता है संसद में, इन जगहों कहते हैं मारा मारी होती है खूब, है ना? जैसे अगर पशुओं को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो कौन से श्लोक पर चर्चा करेंगे, बताओ? जब बाहर निकलेंगे या निकालेंगे तो क्या होगा, लहू लुहान होंगे। तो बिना ज्ञान का व्यक्ति पशु का समान है। तो संसद में भी अगर लीडर बैठे हैं और ज्ञान नहीं है भगवद गीता का, तो जब बाहर निकलते हैं तो वो भी लहूलुहान होंगे, अंदर भी लहूलुहान होंगे। तो सबसे पहली जरूरत है कि लीडर्स सोसाइटी के जो हैं वो आचरण पेश करें। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, इस गीता को जीवन में उतारना पड़ेगा ताकि समाज को वो एक अच्छा कल दे सके, तब जाके जनता फॉलो करेगी। तो इस प्रकार इतने सुंदर प्रसंग में भगवान साफ साफ प्रहलाद महाराज जी को बोल रहे हैं कि इनको फॉलो करना चाहिए, और जो फॉलो करेगा वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और मेरे पास आएगा। कितना आसान है, देखिए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न या जिज्ञासा है?
हरे कृष्णा जी, इसके दो श्लोक पहले जो आपने एक ट्रांसलेशन पढ़ा कि जहाँ पर शांत भक्त होते हैं, समदर्शी भक्त होते हैं, तो वहाँ वो स्थान और वो देश पूरी तरह पवित्र हो जाता है। यहाँ पे इस श्लोक के किकटा वर्ड यूज़ किया है, मतलब वो देश, तो उसको कैसे माने? यहाँ पे जैसे भारत भूमि है और भगवान के कई अवतार, जैसे बताया जाता पाकिस्तान में नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए, इवन दो कंडेम्ड सो दोस कंट्री गेट प्योरीफाइड, इसको कैसे समझे?
जो बता रहे हैं कि सदाचारी हैं और सद्गुण संपन्न हैं, शांत हैं, समदर्शी भक्त हैं, भक्त हैं। तो भक्त जो होता है उसके हृदय में सदैव गोविंद का वास होता है, और जिनके हृदय में गोविंद का वास है, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थम, वो तो तीर्थ को भी पवित्र कर देते हैं और ये जहां कहीं जाते हैं उसको भी पवित्र कर देते हैं। देश का मतलब है पर स्थान, काल देश उस तरह होता है, कंट्री नहीं बोल रहे, तो देश काल परिस्थिति बोलते हैं ना जैसे, तो उस प्रकार की बात कर रहे हैं। और चाहे वो कितने ही उनके परिवार के लोग कितने ही दूषित प्रवृत्ति के क्यों ना हो, तो जिस भी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के सद्गुण हैं, जो भगवान का भक्त है, तो वो उस पूरे के पूरे एरिया को, उस पूरे के पूरे कुल को पवित्र कर देता है। तो इसका ये और कुछ ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की हिताय गौर।
सेंस में सब प्यूरीफाई हो रहे हैं, अब भगवान का नाम लेगा तो सारे पाप खत्म होंगे, वो एनवायरनमेंट बन जाता है।